अध्याय 8 प्राचीन भारत में विवाह। भूमिका: मानव जीवन के समस्त संस्कारों में विवाह का स्थान सर्वोपरि है। हिंदू शास्त्रों में विवाह को जीवन से मुक्ति का साधन माना गया है। मनुष्य संसार में आकर सृष्टि कर्म से विरत नहीं हो सकता। उसका कर्तव्य है कि वह विवाह करके एक पुत्र पैदा करे और इस प्रकार सृष्टि ऋण से उड़ होकर मृत्यु का वरण करे। विवाह ही आश्रम व्यवस्था का आधार है। गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य ही है विवाह करके पारिवारिक जीवन व्यतीत करना। इसकी श्रेष्ठता का रहस्य इस बात में निहित है कि सभी आश्रम इसी पर आधारित हैं। हिंदू विवाह एक सर्वोच्च आदर्श महान यज्ञ तथा जीवन मुक्ति का साधन है, जबकि पाश्चात्य विवाह केवल वासनाओं की संतुष्टि का साधन मात्र है। पूर्व व पश्चिम के दृष्टिकोण में यह अंतर पाया जाता है। भारतीय विचारकों ने व्यक्ति के जीवन को चार भागों में विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है। जब तक विवाह नहीं किया जाता, गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ नहीं हो सकता है। पुरुष और नारी दोनों में सामाजिक प्राणी होने के नाते कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। भूख, प्यास, निद्रा, भय और मैथुन मानव जीवन की मौलिक, मानव समाज की मौलिक आवश्यकताएं हैं। यौन संबंध नर और नारी की मूलभूत आवश्यकता है। इसकी पूर्ति होना अनिवार्य है। विवाह ऐसी संस्था है जिसकी सहायता से नर और नारी के यौन संबंधों को व्यवस्थित रूप दिया जाता है। इस प्रकार विवाह वह मान्यता प्राप्त संस्था है जो नर नारी की यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हिंदू विवाह का अर्थ: हिंदू विवाह के आदर्शों को किसी एक परिभाषा द्वारा स्पष्ट की नहीं किया जा सकता। एक संस्था के रूप में वेस्टर्न मार्क ने विवाह को जिस रूप में परिभाषित किया है, वह हिंदू विवाह की कुछ विशेषताओं को अवश्य स्पष्ट करता है। उसके अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो प्रथा अथवा कानून के द्वारा स्वीकृत होता है और जिसमें दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न हुए बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। इस परिभाषा में हिंदू विवाह की केवल दो विशेषताएं आर्थिक प्रथाओं के मध्य और जीवन साथियों के अधिकार तथा कर्तव्य पर धुंधली सी आकृति देखने को मिलती है। यह परिभाषा हिंदू विवाह को स्पष्ट नहीं करती। वास्तव में हिंदू विवाह एक संस्कार है, वह एक अस्थायी कानूनी बंधन न होकर जीवन भर का धार्मिक बंधन है जिसको तोड़ना हिंदू सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है। यह कोई संविदा ना होकर संस्कार है जिसका उद्देश्य जीवन भर विभिन्न पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयत्न करना है। पाश्चात्य विचारधारा के विपरीत हिंदू विवाह में यौन संतुष्टि को महत्व नहीं दिया गया है। हिंदुओं में यौन संबंधों का एकमात्र उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति ही है जिसमें धर्म कार्यों को पूरा किया जा सके। डॉक्टर प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह सारतः एक संस्कार और औपचारिकता है जिसका होना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के लिए अनिवार्य है। मनु ने लिखा है कि स्त्रियों की सृष्टि माता बनने के लिए, पुरुषों की सृष्टि पिता बनने के लिए ही की गई है। इसलिए कहा गया है कि धार्मिक कार्य पुरुषों को अपने स्त्रियों के साथ करना चाहिए। यही कारण है कि विवाह को हिंदू विचारधारा के अनुसार एक संस्कार अथवा शरीर संस्कार माना जाता है जिसमें शरीर की शुद्धि होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंदू विवाह पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए तथा स्त्री और पुरुष का वह सांस्कृतिक मिलन है जिसका तोड़ना नियम विरुद्ध और अधार्मिक समझा जाता है। हिंदू विवाह के उद्देश्य: हिंदू विवाह के उद्देश्य तथा आदर्श के बारे में धर्म शास्त्रों द्वारा अनेक मतों की प्रतिस्थापना की गई है। ऋग्वेद के अनुसार विवाह का उद्देश्य गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञ करना तथा संतान उत्पन्न करना है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पति पत्नी के गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इस कारण स्त्री को जाया कहा गया है। सत्यपद ब्राह्मण के अनुसार व्यक्ति तब तक अपूर्ण है जब तक कि वह विवाह करके संतान को जन्म नहीं देता, इसी कारण पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार संतानोत्पत्ति धर्म, आनंद, सेवा तथा पूर्वजों की श्रेणियों में पूर्वजों की स्वर्ग प्राप्ति पत्नी पर निर्भर है। उपयुक्त विवरण के आधार पर हम हिंदू विवाह के उद्देश्य को निम्न निम्न श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर एक धर्म, नंबर दो प्रजा, नंबर तीन रति। ये तीनों महत्ता के क्रम में रखे गए हैं। धर्म को सबसे प्रमुख माना गया है और रति को सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर एक धर्म। हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य धर्म है। प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन में कुछ कर्तव्य है और इन कर्तव्यों को उचित ढंग से प्रतिपादित करने के लिए पत्नी की व्यवस्था करता है। पत्नी के बिना एक कार्य पूरे नहीं किए जा सकते। इन कर्तव्यों को यज्ञ कहा गया है, जो संख्या में पाँच है। ब्रह्मा यज्ञ, तृतीय यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नी यज्ञ। नंबर का ब्रह्मा यज्ञ। ब्रह्मा यज्ञ को पठन पाठन के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ब्रह्माचर्य आश्रम में रहकर ऋषि और गुरुजन की सेवा करनी पड़ती है। खा तृतीय यज्ञ। तृतीय यज्ञ को श्राद्ध के अवसर पर पितरों को तर्पण देकर पूरा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति पर पितरों का ऋण होता है और इस ऋण से पूर्ण होने के लिए पुत्र उत्पन्न करना आवश्यक है, जिसके लिए विवाह आवश्यक हो जाता है। नंबर का देव यज्ञ। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर देव ऋण होता है, जिसका मोचन पति पत्नी साथ साथ बलि देकर तथा दान देकर कर सकते हैं। नंबर का भूत यज्ञ। जिससे प्रेत आत्माओं को भोजन आदि समर्पित करके पूजा किया जाता है। नंबर अंग नीति यज्ञ, जिसको अति सेवा करके पूरा किया जाता है। हिंदू विवाह वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पूर्ण किया जाता है। कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह को इसलिए एक धार्मिक कृत्य समझा जाता है, क्योंकि यह तभी पूर्ण समझा जाता है जब कुछ पवित्र मंत्रों के द्वारा किन्हीं रीतियों का पालन किया जाए। ऋग्वेद के अनुसार विवाह का आदर्श गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देवताओं के लिए यज्ञ करना और संतान उत्पन्न करना है। अपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार विवाह के द्वारा ही मनुष्य धार्मिक अनुष्ठानों के योग्य बनता है, क्योंकि अविवाहित पुरुष अपूर्ण रहता है। विवाह के द्वारा ही मनुष्य को पुत्र प्राप्ति हो सकती है, जो उसको नरक से बचाता है। मनु का मत है कि संतान धारण धार्मिक आचारों का पालन सेवा श्रेष्ठ आनंद और स्वर्ग प्राप्ति स्त्री के बिना संभव नहीं है, अतः विवाह आवश्यक है। नंबर दो प्रजा या संतति। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य संतति उत्पन्न करना है। पुत्र उत्पन्न करना हिंदू विचारधारा के अनुसार अति आवश्यक है। मनु संहिता और महाभारत में दी गई व्यवस्था के अनुसार पुत्र का अर्थ है नरक। कोष्टक में पुम में जाने से पिता की रक्षा करने वाला पुत्र प्राप्ति और प्रजनन क्रिया को यौन संतुष्टि का परिणाम न मानकर उसे धर्म साधन कहा गया है, जिसके कारण मनुष्य को विवाह में यौन संतुष्टि के ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है। कपाड़िया के शब्दों में वास्तव में विवाह का मुख्य आदर्श है धर्म पालन, क्योंकि प्रजा और रति में रति भी धर्म पालन के अंग है। मनु के अनुसार पुत्र प्राप्ति इस संसार और अपने संसार दोनों में सुख का साधन समझ गया है। मनु ने लिखा है, केवल वह व्यक्ति ही पूर्ण व्यक्ति कहलाने योग्य है जिसके पास पत्नी है और बच्चे हैं। अतएव प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह करना अनिवार्य माना गया है। विवाह अपने तथा पूर्वजों के प्रति एक कर्तव्य है। महाभारत में एक कथा है जिसके अनुसार एक स्त्री बिना विवाह की तपस्या करने लगी, परंतु नारद जी ने उससे कहा, बिना विवाह द्वारा शरीर शुद्ध किए उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। जो उससे अपने तप का आधा फल देकर श्रृंगवान से विवाह किया और फिर वह कहीं स्वर्ग को जा सकी। पुत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है, क्योंकि बिना पुत्र के अनेक धर्म कार्य नहीं हो सकते, जैसे तर्पण, पिंडदान तथा पितरों की शांति। ऐसा कहा जाता है कि जरत्ताकारु उग्र तपस्वी ऋषि थे, किंतु अपने पितरों की दयनीय दशा को देखकर विवाह किया और पुत्र उत्पन्न किया। नंबर तीन रति। रति का अर्थ है यौन क्रिया से प्राप्त आनंद। रति का स्थान हिंदू विवाह में सबसे गौण रखा गया है और यौन क्रिया का समाजीकरण ही विवाह का मुख्य आधार भी माना गया है, परंतु साथ ही साथ यौन संतुष्टि ही उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। विवाह में रति के गौण स्थान को सिद्ध करने के लिए यह कहा गया है कि केवल शूद्र का ही विवाह इंद्रिय सुख के लिए होता है, क्योंकि शूद्र ही सांसारिक और दैहिक सुखों में लिप्त रहता है और उसके जीवन में कोई उच्च आदर्श नहीं होते। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य धार्मिक ही रहा है कि केयन कपाड़िया के अनुसार अपनी पुस्तक भारत में विवाह और परिवार में हिंदू विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए लिखा है, हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म पूजा तथा रति बतलाए गए हैं, जबकि काम या यौन संबंध विवाह का एक कार्य है, लेकिन इसको तीसरा स्थान दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि वह विवाह अत्यंत कम वांछनीय उद्देश्य है। विवाह में यौन संबंध की निरंतर भूमिका पर बल देने के लिए ही यह कहा गया है कि शूद्र का विवाह केवल यौन संबंध के लिए होता है। शूद्र एक घृणित व्यक्ति माना जाता है जिसके जीवन का कोई उच्च ध्येय नहीं होता है। चूँकि शूद्र से घृणा की जाती है, इसलिए शूद्र का स्त्री के साथ संबंध को भी नीची दृष्टि से देखा गया है। यद्यपि इसे रोका नहीं जा सका, इसी के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण कानून निर्माताओं ने आदेश दिया है कि शूद्र पत्नी केवल भोग विलास के लिए है। भारत आदि में पूत शब्द का अर्थ है जो नरक से बचावे, इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह को आवश्यक बताया गया है। विवाह की इच्छा न तो यौन संबंध के लिए की जाती है और न पुत्र प्राप्ति के लिए, जितनी की धार्मिक कृत्यों के द्वारा एक साथी प्राप्त करने के लिए की जाती है। विवाह के समय यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और गृह स्वामी का यह कर्तव्य हो जाता था कि वह पंच महायज्ञ में अपनी पत्नी के साथ नित्य आहुति प्रदान किया करे। इन उत्तरदायित्वों की समाप्ति गृह स्वामी की मृत्यु पर होती थी। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर इनमें व्यवधान पड़ जाता है और इसलिए गृह स्वामी के लिए तुरंत ही दूसरी पत्नी लेने का विधान था। इस प्रकार मुख्य रूप से विवाह कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होने के कारण इसका मूल उद्देश्य धर्म था। क्या विवाह एक संस्कार है? कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनका सुसंपादन किया जाना विवाह की पूर्णता के लिए आवश्यक था। ये मुख्य कृत्य होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी है। ये सभी कार्य ब्राह्मण के द्वारा पवित्र अग्नि के सामने मंत्रों के साथ किए जाते हैं। हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जब ये पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किए जाते हैं। एक दूसरे के कारण से भी यह संस्कार है क्योंकि हिंदू पुरुष अपने संस्कारों अनेक संस्कारों को करते हुए आगे बढ़ता है। ये गर्भाधान से आरंभ होकर शरीर के दाह संस्कार में ही समाप्त होते हैं। इस संस्कार में लड़के की आवश्यकता होती है, इसलिए विवाह स्त्री के लिए आवश्यक समझा गया क्योंकि यही एक संस्कार है जो उसके लिए किया जाता है। विवाह हो जाने के बाद स्त्री पुरुष को एक साथ जीवन बिताना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के अनुकूल बनते हैं, वे एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। विवाह परिवार तथा समुदाय के प्रति एक सामाजिक कर्तव्य था, इसमें व्यक्तिगत हित की कोई भावना नहीं रहती थी। इस सब के होते हुए भी विवाह एक अविच्छिन्न संस्कार था। कपाड़िया के शब्दों में विवाह संस्कार के रूप में चालू रहता है, लेकिन उसको नैतिकता के उच्च स्तर पर आगे बढ़ा दिया जाता है। वास्तव में हम तो सप्तपति के मंत्र में दिए वैदिक आदर्शों की ओर पीछे जाते हैं, जिनमें बतलाया गया है कि मैं तुझे अपने जीवन की सहचरी के रूप में ग्रहण करता हूँ। कपाड़िया के ही शब्दों में कुछ धार्मिक संस्कारों के द्वारा समाज में मान्यता प्राप्त दो स्त्री पुरुष का विधवत मिलन ही हिंदू विवाह है, जिसका उद्देश्य धर्म कर्म पुत्र प्राप्ति और रति के प्रयोजन को पूरा करना है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, वैधानिक या सामाजिक समझौता नहीं है। यह इसलिए धार्मिक संस्कार है कि विवाह धार्मिक विवाहों के लिए कुछ कर्मकांड करने पड़ते हैं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, सामाजिक समझौता नहीं। हिंदू विवाह के उद्देश्यों का जो उल्लेख हमने ऊपर किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक संविदा या अस्थाई बंधन न होकर धार्मिक संस्कार है, जिसकी पूर्ति प्रत्येक हिंदू के लिए करना अनिवार्य है। संस्कार से तात्पर्य अनुष्ठान से है, जिसके द्वारा मानव जीवन की क्षमताओं का उद्घाटन होता है, जो मानव को सामाजिक जीवन के हेतु बनाने का गुण प्रदान करता है एवं जिसके द्वारा व्यक्ति को कुछ विशेष सामाजिक स्तर प्रदान किया जाता है। इस दृष्टि को दृष्टिकोण से हिंदू विवाह वास्तव में एक संस्कार है, क्योंकि वह धार्मिक क्रियाओं को माध्यम बनाकर जीवन को ऊंचा उठाता है और अनेक धार्मिक आदर्शों के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है। यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन के योग्य बनाने में योगदान देता है। हिंदू विवाह की निम्नलिखित विशेषताओं से स्पष्ट हो जाएगा कि वह पूरी तरह से एक धार्मिक संस्कार है। नंबर एक, विवाह का एक आधार धर्म। हिंदू विवाह का संबंध यौन संतुष्टि से न होकर गृहस्थ आश्रम के द्वारा धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करने से है। यहाँ काम को केवल इसलिए महत्व दिया गया है कि वह संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, जिसके बिना सभी धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। पत्नी के अभाव में पितृऋण को चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए विवाह आवश्यक है। नंबर दो, ऋणों से उड़ होने का माध्यम। हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह को स्वर्ग का द्वार कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके विभिन्न यज्ञों को संपन्न करता है। वह सभी प्रकार के ऋणों से उड़ होता है। विभिन्न यज्ञों के द्वारा ऋणों से तब तक उड़ नहीं हुआ जा सकता जब तक कि व्यक्ति विवाह ना करे। विवाह के बिना व्यक्ति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के दायित्व को पूरा नहीं कर पाता। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे कि जब अनेक ऋषियों ने अविवाहित रहकर स्वर्ग प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वह तब तक सफल ना हुए जब तक उन्होंने विवाह नहीं किया। मनु ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिस प्रकार सभी नदी और नाले अंत में समुद्र में आकर गिरते हैं, उसी प्रकार सभी धर्मों का आधार गृहस्थ आश्रम है, वैवाहिक जीवन ही है। नंबर तीन, व्यक्ति की स्थिति का निर्धारक। समाज में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण कुछ हद तक विवाह के द्वारा होता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अविवाहित व्यक्ति का संपत्ति, परिवार व समाज में कोई स्थान नहीं होता है, और साथ ही साथ उसे सदैव शंका की दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत विवाह वह प्रमाण पत्र है जिसके माध्यम से वह सभी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेता है और सामाजिक जीवन में एक विशेष स्थिति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्म प्रधान समाज में विवाह के द्वारा ही व्यक्ति को सामाजिक स्थिति का निर्धारण होने के फलस्वरूप उसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। नंबर चार, विवाह संबंधों का स्थायित्व। हिंदू विवाह को इसलिए भी एक धार्मिक संस्कार माना जाता है कि उसमें पति पत्नी का संबंध अटूट एवं जन्म जन्मांतरों का माना गया है। यदि विवाह को धार्मिक रूप ना दिया जाए तो उसमें स्थिरता नहीं आ सकती थी। विवाह में पत्नी को प्राप्ति व्रत धर्म का महत्व बतलाया जाता है। नंबर पाँच, धार्मिक विधि विधान एवं अनुष्ठान। हिंदू विवाह एक संस्कार है। यह इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि विवाह की संपूर्ण प्रक्रिया धार्मिक विधियों के एवं अनेक अनुष्ठानों से परिपूर्ण होती है। विवाह के समय जिन प्रमुख अनुष्ठानों एवं संस्कारों को पूरा किया जाता है, उनकी संख्या प्रोफेसर काणे ने 39 बतलाई है। यहाँ कुछ प्रमुख संस्कारों का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे कि संस्कार के रूप में विवाह की धार्मिक प्रकृति स्पष्ट होती है। नंबर का वागदान। यह विवाह का पहला महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। आधुनिक युग में यह कार्य वर पक्ष द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर वैदिक मंत्रों इत्यादि का उच्चारण होता है। खा, कन्यादान। विवाह के समय कन्या के पिता वर को अपनी पुत्री का दान देता है और उससे यह आश्वासन लेता है कि वह धर्म अर्थ काम की पूर्ति में कभी भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करेगा और आजीवन उससे अपनी संगनी बनाए रखेगा। नंबर का अग्नि स्थापन। कन्यादान के पश्चात वर वधु को बंधन को अस्थाई बनाने के लिए अग्नि में आहुतियाँ दी जाती हैं और अग्नि से शक्ति एवं सुख की कामना की जाती है। घा, पाणिग्रहण। इसका अर्थ है दूसरे के हाथ को स्वीकार करना। वह वधू का हाथ पकड़कर मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसका अर्थ होता है कि मैं तेरा हाथ पकड़कर सुख की कामना करता हूँ, तू वृद्धावस्था तक मेरे साथ रहना, मेरा धर्म तेरा पोषण करना है और तेरे द्वारा संतान को जन्म देना, जन्म देते हुए तू 100 वर्षों तक जीवित रहना है। अंग अग्नि परिणयन, इसके अंतर्गत वर वधु अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और यह कामना करते हैं कि ये दीर्घ आयु, तेजस्वी और मनस्वी हो, उनके अनेक पुत्र हो और ये 100 वर्ष तक देखे, 100 वर्ष तक जीवित रहे और 100 वर्ष तक सुनते रहे। नंबर 4 सप्तपदी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें वर वधु उत्तर दिशा की ओर 7 कदम आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक पग में क्रम से अन्न, धन, सुख, संतान, प्राकृतिक सहायता और पारस्परिक सखा भाव की कामना करते हैं। साथ ही साथ ही वे यह भी कामना करते हैं कि दोनों का मन एक दूसरे के अनुकूल रहे। उपर्युक्त सभी विशेषताएं हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में प्रकट करती हैं। यहाँ यह प्रश्न बरबस उठता है कि जब सभी समाजों में विवाह की प्रक्रिया व्यक्ति को परिष्कृत करती है तो अन्य धर्मों में क्या विवाह संस्कार नहीं है? वास्तव में प्रत्येक समाज में विवाह एक संस्कार होता है, परंतु हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उसका रूप अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुव्यवस्थित है। साथ ही कुछ धर्मों में विवाह के अंदर संविदा और सुविधापूर्ण परिस्थितियों का भी समावेश होने के कारण विवाह में धार्मिकता का अंश बहुत कम हो गया, जबकि हिंदू विवाह पूर्णतया धार्मिक जीवन से संबंध है और इसलिए यह अस्पष्ट धार्मिक संस्कार है। आसुर और आश्र विवाह, आसुर विवाह मनुस्मृति में लिखा है, ज्ञातिभ्यो द्रविडम् दत्त्वा कन्याये चैव सपितः कन्या प्रदानम् स्वच्छन्दा दासुरो धर्म उच्यते। कन्या को और उसके पिता आदि को यथाशक्ति धन देकर स्वच्छंदता से कन्या प्राप्त करना आसुर विवाह कहलाता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, इस विवाह में विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति कन्या के पिता अथवा अभिभावक को कन्या का मूल्य देना पड़ता है। कन्या का मूल्य पहले ही निश्चित हो गया रहता है और उसे चुकाए बिना विवाह को नहीं हो सकता। इस मूल्य की कोई भी सीमा नहीं हो सकती। यह तो कन्या के गुण तथा परिवार के स्तर के ऊपर निर्भर रहता है। ऐसा लगता है आर्ष विवाह और आसुर विवाह दोनों एक प्रकार के हैं, क्योंकि दोनों में ही कन्या पक्ष को या वर पक्ष को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। यह सच है कि दोनों ही स्थिति में वर पक्ष कुछ न कुछ देता है, लेकिन इस देने के उद्देश्य और आधार में बहुत अंतर है। आर्ष विवाह में जो गाय या बैल दिया जाता है वह कन्या का मूल्य नहीं है, वरन इस बात का प्रमाण है कि आर्ष विवाह करने के इच्छुक हैं और जो कुछ वह अपने भावी ससुर को दे रहे हैं वह ऋषि कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन असुर विवाह में जो कुछ दिया जाता है वह वास्तव में कन्या का मूल्य ही होता है और उसे चुकाए बिना विवाह हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ यह कन्या मूल्य आर्ष विवाह की तरह निश्चित भी नहीं होता। यह कन्या के गुण और परिवार की दशा के द्वारा ही निश्चित होता है, लेकिन आर्ष विवाह में कन्या के माता पिता को निश्चित रूप में एक गाय और एक बैल अथवा 2 जोड़े गाय अथवा बैल मिलते हैं। इन मौलिक विभिन्नताओं के कारण ही इन दोनों विवाहों के 2 भिन्न नाम तथा प्रकार स्वीकार किए गए। उच्च जाति के हिंदुओं में असुर विवाह बहुत ही खराब माना जाता है। नीच जाति के लोगों में अभी भी यह बात देखी जाती है। आर्ष विवाह मनुस्मृति के अनुसार, एकम गो मिथुनम देवा वरा ददाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधि वरदासो धर्म सह उच्यते। वर के 1 या 2 जोड़े गाय या बैल धर्म पूर्वक लेकर कन्या देने को आर्ष विवाह कहा गया है। आर्ष विवाह का संबंध ऋषि शब्द से है। बौद्धिक आध्यात्मिक शक्ति और चरित्र के लिए ऋषियों का समादार किया जाता था। उनसे ऐसी बुद्धिमान संतति की उत्पत्ति की आशा की जाती थी जो कि परिवार तथा समाज के गर्व के गर्व के गौरव के रूप में हो। इसलिए ऐसे ऋषियों से अपनी कन्या का विवाह कर देने को माता पिता इच्छुक रहते थे। ऋषि लोग प्रायः विवाह के मामले में उदासीन रहते थे, इसलिए विवाह करने को इच्छुक ऋषि को अपने भावी ससुर को एक गाय अथवा बैल अथवा इनके दो जोड़े देने पड़ते थे, जिससे कि यह प्रमाणित हो जाए कि ऋषि ने अब विवाह बंधन स्वीकार कर लिया है। इसको कन्या का मूल्य ना समझना चाहिए। इस प्रकार की भेंट स्वीकार करके कन्या के पिता और माता कन्या को ऋषि की पत्नी के रूप में सौंप देते हैं और उन दोनों को इसके पश्चात पवित्र के हस्त धर्म निर्वाह करने का अवसर दिया जाता था। हिंदू विवाह के प्रकार प्रशस्त एवं अप्रशस्त विवाह। विवाह के रूपों की संख्या क्रम और नाम सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। आश्वलायन, गृहसूत्र, बौद्धायन, धर्मसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति तथा महाभारत के आदि पर्वों में विवाह के रूपों की संख्या 8 कही गई है। अपस्तंभ धर्मसूत्र में विवाह के 6 रूप बताए गए हैं। यहाँ प्रजापत्य और पैसाच का उल्लेख नहीं किया गया है। वशिष्ठ धर्मसूत्र में ब्रह्मा, देव, आर्ष, गंधर्व, छात्र और मानुष में 6 भेद ही किए गए हैं। मानव गृहसूत्र में ब्राह और शैल्व आसुर यही 2 रूप बताए गए हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में विवाह के 5 रूप कहे गए हैं। अश्वलायन गृहसूत्र में प्रजापत्य को 3रा और आस को 4था स्थान दिया गया है, जबकि मनु याज्ञवल्क आस को 3रा और प्रजापत्य को 4था स्थान देते हैं। मनु याज्ञवल्क और दूसरे स्मृतिकार तथा अधिकांश गृहसूत्रकार राक्षस को 7वां और पैसाच को 8वां स्थान देते हैं। पर अश्वलायन गृहसूत्र में पैसाच को 7वां और राक्षस को 8वां स्थान देते हैं। वशिष्ठ द्वारा राक्षस को छात्र और असुर को मानुष नाम दिया गया है। याज्ञवल्क प्रजापत्य को काम विवाह कहते हैं। सह कामम पावय तज्ज। प्रशस्त एवं अप्रशस्त विवाह का अर्थ। अच्छे लोगों, विचारकों और सुधारकों के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है उसे सही, उचित, उपयुक्त और सच्चा मार्ग या कार्य माना जाता है। सही मार्ग एवं एक व्यवस्थित व्यवस्था देने के कारण प्रशस्त शब्द प्रयोग हुआ है। यह शब्द समाज शास्त्र में भी अब प्रयुक्त होने लगा है और प्राचीन भारतीय चिंतकों के 8 प्रकार के विवाहों के वर्णन प्रशस्त और अप्रशस्त शब्द का प्रयोग उचित, अनुचित, शुद्ध, अशुद्ध, भले, बुरे एवं समाज में प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित अब के रूप में प्रशस्त एवं अप्रशस्त शब्द में प्रयोग किया गया है। अतः 8 प्रकार के विवाहों में प्रथम 4 प्रशस्त विवाह माने गए हैं और शेष 4 गांधर्व, राक्षस, पैसाच एवं असुर विवाह को अप्रशस्त विवाह के नाम से भी संबोधित किया गया है। प्राचीन भारतीय समाज में विवाह संस्कार पर अत्यंत ही सूक्ष्म विधि से चिंतन किया गया है और उसकी पवित्रता के लिए 4 ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापति इनको ही सामाजिक विचारकों के विचारों द्वारा सच्चा माना गया है, क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था योग्य सामाजिक विचारकों के द्वारा प्रशस्त दिखलाई या निर्मित की गई थी। अतः इसे प्राचीन भारतीय सामाजिक विचारकों के प्रशस्त किए हुए मार्ग द्वारा इन्हें समाज में अधिक मान्यता एवं प्रतिष्ठा थी। इसी आधार पर ये उनके दिखाए हुए मार्ग के कारण प्रशस्त और अप्रशस्त शब्द से भी व्यवहार में लाए गए। शुद्ध मान एवं उनकी प्रशस्त की गई व्यवस्था से ही इन्हें उचित होने से प्रशस्त और अनुचित होने से अप्रशस्त नाम से भी संबोधित किया गया। जैसे अच्छे लोग जिस मार्ग में प्रशस्त कर देते हैं उस पर चलना ही प्रशस्त होगा, ना चलना अप्रशस्त होगा। सही मार्ग का निर्देशन ही प्रशस्त और निषेध अप्रशस्त। पंथा किसे कहते हैं? महाजान सज्जन लोग जिस पर चले उसे ही पंथा कहते हैं। महाजनो ये ना गतः स पंथा। उसी प्रशस्त शब्दों को भी अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। विवाह के इन रूपों के नाम क्रम आदि में भेद होने पर भी इनके लक्षणों के विषय में लगभग समान मत है, इसलिए मनुस्मृति को आधार मानकर हम इनकी विवेचना करेंगे। नंबर एक, ब्रह्मा विवाह। मनुस्मृति में ब्रह्मा विवाह के संबंध में इस प्रकार लिखा गया है, अच्छाद चार्च इत्वा चाश्रुति सीलवते स्वयं आहुविदानम कन्याया ब्राह्मो धर्मम प्रकीर्तितः। अर्थात कन्या को वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके विद्वान सीलवान वर को आमंत्रित करके कन्यादान करने का नाम ब्रह्मा विवाह है। इस प्रकार के आवश्यक तत्व नीति तीन है, माता पिता की स्वीकृति, विवाह संस्कार का होना तथा दहेज का ना देना। दहेज का ना देना इसलिए क्योंकि कन्या को केवल एक वस्त्र से अलंकृत करके उसका दान दिया जाता है। नंबर दो, प्रजापत्य विवाह। सहोभव चरताम धर्ममिति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदान मभ्य च प्रजापात्यो विधि स्थित। अर्थात तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का आचरण करना, यह कहकर वर की पूजा करके कन्या दान करना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार वर और वधु दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के लिए हो, यह कामना करना ही प्रजापत्य का आधार है। ब्रह्मा और प्रजापत्य विवाह में हम अधिक अंतर नहीं पाते। ब्रह्मा और प्रजापत्य एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। विशिष्ट, वशिष्ठ और अपस्तंभ दो प्रारंभिक लेखक थे और दोनों ने प्रजापत्य का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया है। संभवतः इस विवाह को इस प्रकार बाद में जोड़ा गया। नंबर तीन, आर्ष अथवा आर्य विवाह। आर्ष विवाह के बारे में मनु ने लिखा है, एकम गोमी धुनम देवा वर ददाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधि वदानो धर्मसा उच्यते। अर्थात पवित्र धर्म के विवाह के उद्देश्य से ऋषि से एक गाय और बैल अथवा दो घोड़े लेकर कन्या के माता पिता उसे ऋषि की पत्नी के रूप में सौंप देते थे। ये वस्तुएं कन्या मूल नहीं थी बल्कि ऋषि के गृहस्थ जीवन बिताने के निश्चय की सूचक थी। डॉक्टर पी के आचार्य के अनुसार आर्ष विवाह का संबंध ऋषि शब्द से है। बुद्धिमान और गुणवान संतानोत्पत्ति की इच्छा से माता पिता अपनी पुत्री का हाथ एक ऋषि के हाथ में देते थे और ही साथ साथ उसे गृहस्थ जीवन में बांधने के वास्ते पशुधन भी। नंबर चार, दैव विवाह। दैव विवाह के बारे में मनुस्मृति में लिखा है कि यज्ञेतु वीतते सम्यक गीत्वजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुता दानम दैवम धर्म प्रच्छते। अर्थात दैव विवाह में अस्त्र वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान उस यज्ञकर्ता ऋत्विज को दिया जाता है जो किसी यज्ञशाला में किसी पुरोहित के कार्य को उचित रूप में पूरा करता है। अल्टेकर के अपनी पुस्तक पोजीशन ऑफ दी वुमेन इन इंडिया में लिखा है कि प्राचीन काल में गृहस्थ लोग समय समय पर यज्ञ करवाते थे और उस समय ऋषियों के साथ आर्य आए हुए नव युवक पुरोहित बालकों में से किसी के साथ यजमान अपनी पुत्री का विवाह कर देता था, क्योंकि देवताओं के पूजा के समय इस प्रकार का विवाह संपन्न होता था, इसलिए इसे देव विवाह कहा गया है। नंबर पाँच, आसुर विवाह। मनुस्मृति में आसुर विवाह के संबंध में लिखा है कि जाति भो द्रविड़म दसवा कन्याय चंद्र शक्तितः कंथा प्रदानम स्वाच्छांदास दासुरो धर्म उच्यते। अर्थात आसुर विवाह उसे कहते हैं जब विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के कुटुंबियों या कन्या को धन देकर विवाह करता है। महाभारत काल में पांडु का माद्री के सिवा साथ विवाह का इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। नंबर छह, गांधर्व विवाह। मनुस्मृति में गांधर्व विवाह के संबंध में लिखा है, इच्छा मान्योन्य संयोग कन्यायाश्च वर्यस्य च गांधर्व सातु विजेयो मैथुन्यः आकर संभवः। अर्थात गांधर्व विवाह उसे कहते हैं जो कन्या और वर के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप होता है। इसमें वैवाहिक संस्कार कार्य संभोग के बाद में पूर्ण किए जाते हैं। किस प्रकार के विवाह में पुरुष और स्त्री दोनों अपनी इच्छा के अनुसार पति और पत्नी चुन लेते हैं और पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं और बाद में अपने परिवार और समाज से उसकी स्वीकृति लेते हैं। सत्यार्थ प्रकार के अनुसार अनियम असमय किसी कारण से दोनों की इच्छा पूर्वक वर कन्या का परस्पर संयोग होना गंधर्व विवाह है। प्राचीन काल में गंधर्व नामक की एक जाति थी जो अत्यंत कामुक थी। उनके लिए कहा गया है स्त्री कामावे गंधर्वा, अर्थात स्त्री की कामना गंधर्व लोगों की विशेषता है। यही कारण है कि काम वासना पर आश्रित इस प्रकार के विवाह को स्मृतकारों ने गंधर्व विवाह का नाम दिया है। गंधर्व विवाह के संबंध में दो प्रकार की धारणाएं हैं, एक तो इसके समर्थन में और दूसरी इसके विरोध में। वास्तायन और बौधायन इस प्रथा के बहुत बड़े पोषक हैं। बौधायन के अनुसार यह विवाह पुरुष स्त्री की इच्छाओं पर आश्रित है, इसलिए आदर्श है। नंबर 7, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह उस काल की प्रथा है जबकि स्त्रियां युद्ध की पारितोषिक मानी जाती थी। मनुस्मृति में लिखा है, हत्वा छित्वा चा भित्वा चा कोसंति रुदति गृहातो तसहाय कन्या हरणम राक्षसी विधि रुच्यते, अर्थात राक्षस विवाह में विजेता कन्या पक्ष के लोगों को मार काट कर उनका घर छोड़कर विलाप करती हुई कन्या को उसके घर से ही लाता है। श्री कृष्ण का रुक्मणि से विवाह इसी प्रकार से हुआ था। इस विवाह को क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं क्योंकि लोग युद्ध करते हैं और विजयी होने पर शत्रु की कन्याओं को भी पारितोषिक स्वरूप उठा ले जाते हैं। नंबर 8, पैशाच विवाह। मनु ने पैशाच विवाह के संबंध में निम्न प्रकार विचार रखे हैं, सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वारहो यतो क्षालच्छति सापपिष्टो विवाह नाम पैशाचाष्ट में अधमः, अर्थात सोई हुई शराब पीने से उन्मत्त स्त्री में एकांत में विवाह करना ही पैशाच विवाह है। मनु ने इसलिए इस विवाह को अधम और सबसे पापिष्ट विवाह माना है। वशिष्ठ और अपस्तंभ ने इस प्रकार के विवाह को विवाह की श्रेणी में ही रखने में आपत्ति की है, परंतु मनु ने कुछ सामाजिक कारणों से इसे विवाह की श्रेणी में करते हैं। अवाह और विवाह। अवाह का अर्थ है आमंत्रण, यह भी विवाह का एक प्रकार है, अर्थात आमंत्रित करके जो विवाह संपन्न किया जाए उसको अवाह विवाह यानी आमंत्रित करके किया गया विवाह करते हैं। इस कोटि में ब्रह्मा विवाह आता है। मनुस्मृति में इस विवाह के लिए कहा गया है, अच्छाद चार्च इत्वाचा श्रुति सीलवते स्वयं अहूव दानम कन्याया ब्रह्मा धर्मम प्रकीर्तित। मनुस्मृति, वर कन्या दोनों ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान धार्मिक और सुशील हो, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्रह्मा विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या के माता पिता अपनी प्रसन्नता से एक विवाह और योग्य वर को अपनी कन्या के लिए चुनते हैं, उसे अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और कन्या को वस्त्र और अलंकार आदि से सुसज्जित करके उस वर को दान करते हैं। अवाह विवाह का सर्वोत्तम रूप है, इसमें वर पक्ष को अपने यहाँ आने के लिए कन्या पक्ष आमंत्रण देता है। विवाह का अर्थ शादी दाम्पत्य सूत्र में आबद्ध होने की एक प्रथा से है। इस प्रथा के कई रूप मिलते हैं जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के विवाह आ जाते हैं। विवाह मनु के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। विवाह के अंतर्गत आवाह यानी निमंत्रण देकर किया गया ब्रह्मा विवाह आता है। छात्र विवाहों के विभिन्न प्रकारों की सामाजिक रूपरेखा का विवेचन। लड़ाई करके या छिन झपट कर कन्या से विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह युद्ध के समयों में अधिक हुआ करते थे। युद्ध में विजय करके स्त्रियों को प्राप्त करना गौरवपूर्ण माना जाता था। अन्य शब्दों में स्त्रियों को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। उसे प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष के लोगों पर आक्रमण किया जाता था और शक्ति के द्वारा कन्या को जबरन उठा ले जाकर विवाह किया जाता था। चूँकि युद्ध से अधिक संपर्क क्षत्रियों का था, अतः इस प्रकार का विवाह अधिकतर क्षत्रियों में ही प्रचलित था। इसको छात्र विवाह भी कहा जाता है। क्षत्रिय गंधर्व विवाह भी करते थे। जंगलों में शिकार खेलने जाते थे अथवा किसी अन्य परिस्थितियों में गंधर्व विवाह भी हो जाते थे। इस विवाह को भी मनु ने विवाह की 8 कोटियों में एक कोटी माना है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से इसी प्रकार का विवाह किया था। गंधर्व विवाह उस विवाह को कहते हैं जिनमें कन्या और वर परस्पर प्रेम के फलस्वरूप अपने माता पिता के आज्ञा के बिना ही विवाह कर लेते हैं। इसमें विवाह के पूर्व ही यौन संपर्क होना अधिक संभव रहता है। दुष्यंत ने यही किया था। क्षत्रिय के लिए राक्षस विवाह उचित तथा धर्माकुल माना गया है। मनु ने लिखा है, राक्षस क्षत्रिय अस्मकम। महाभारत में उल्लेख है, राज्ञाम तु राक्षसो राक्षसो अप्युक्तो प्रसहयवर्णम चापि क्षत्रियणाम प्रसस्यते। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वह है जिसमें उच्च श्रेणी के वर का उसके निम्न वर्ग की कन्या के साथ विवाह हो। 8वीं शताब्दी के समाज में यह बात सामान्य थी। 10 विभिन्न जातियों की पत्नियों द्वारा उत्पन्न पुत्रों के दाय भाग के नियमों को धर्मशास्त्र के लेखकों ने बताया है। नाना वर्ण स्त्री समवावे दायम दशा शान कुत्वा चतुर स्त्री दान स्त्री द्रा देवेक मिति यथाक्रम भी भवे भी भजेत। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों में अनुलोम प्रकार के अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे। कुछ अभिलेखी और साहित्यिक स्रोत भी इस पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। शुंगवंशी अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका के साथ विवाह किया था। 5वीं शताब्दी के एक आर्य लेख से ज्ञात होता है कि श्रुति तथा स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण परिवार के सोम नामक व्यक्ति ने क्षत्रिय स्त्री के साथ विवाह किया था। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ग की कन्या का विवाह उस निम्न वर्ग के वर के साथ विवाह होता था। स्मृतियों में इसकी निंदा की गई है। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र की ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पत्नियां थीं। गढ़कार के पिता की एक शूद्र स्त्री थी। इसके बच्चे समान रूप से उसी घर में निवास करते थे। विधवा विवाह तथा तलाक। स्मृतियों में विधवा विवाह की निंदा की गई है। स्मृतियों एवं काम सूत्र में इसको पुनर्भ की संज्ञा दी गई है। स्मृतियों में कहा गया है कि पत्नी को चाहिए कि पति की मृत्यु के बाद वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। उसे ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कि उसके मृत पति की स्मृति को किसी प्रकार का आघात न पहुंचने पावे। स्मृतियों में यह भी कहा गया है कि धार्मिक मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कोई विधवा विवाह कर सकती है। कन्या में जो अवगुण हो वे पिता माता द्वारा पति पक्ष को बता दिया जाना चाहिए। इन दुर्गुणों का गोपन मनुष्य स्मृति के अनुसार पाप है। यदि विवाह के पूर्व ये दुर्गुण वर पक्ष को बतला दिए जाते हैं तो वर पक्ष के लोग दंड के भागी होते हैं। लेकिन यदि विवाह के बाद रोग तथा अस्पष्ट मैथुन जो कि वर पक्ष को बताया नहीं गया था, यदि ऐसा है तो वर पक्ष पत्नी को त्याग सकता है। नारद के अनुसार ये शर्तें पति के लिए भी लागू होती है। नारद एवं पराशर के अनुसार अगर पति कलीव है तो उसका प्रत्याग करना अपराध नहीं है। पत्नी उसी दशा में अन्य पति का चुनाव कर सकती है जब पति नष्ट भूत प्रवजित कलीव पतित है। हिंदू व्यवहारिक विधियां। विवाह से संबंध रखने वाली विधियों एवं कर्म कांडों के संबंध में सभी ग्रंथ वर को पिता या संरक्षक के द्वारा कन्या का दान बताया जाता है। गृह सूत्रों के अनुसार वर वधु के घर प्रस्थान करता था जहाँ पर की विवाह संपन्न होता था। अपस्तंभ गृह सूत्र में ज्ञान में इन विधियों का उल्लेख विस्तार के साथ किया गया है। धार्मिक विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर वधु परीक्षा। इसमें 2 बातें आती हैं। चा वर के गुण, कुलीनता, सच्चरिता, सौभाग्य, विद्या, स्वास्थ्य आदि। छा वधु के गुण, कुलीनता, निरोगता, कटिचीणता, कुशाग्र बुद्धि, लावण्य और सौभाग्य। नंबर 2, वर प्रेषण। धर्म शास्त्रों में वर पक्ष कन्या पक्ष के पास तथा कन्या पक्ष वर पक्ष के पास जाया करते थे। कोई आवश्यक नहीं, कोई एक पक्ष ही इसके लिए जाए। नंबर 3, वरदान। वर पक्ष कन्या पक्ष के पास जाए अथवा कन्या पक्ष वर पक्ष के पास जाए। वार्ता के उपरांत अंतिम निर्णय को वागदान कहते हैं। कन्या पर उसके पिता अथवा अभिभावक का स्थान मुख्य होता था, अतएव विवाह के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार उसी को था, उसी का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। लेकिन आजकल दशा उसके बिल्कुल विपरीत हो गई है, अब अंतिम निर्णय पिता या वर के अभिभावक का होता है। नंबर चार मंडपकरण। विवाह के पूर्व मंडप का निर्माण किया जाता है। शास्त्रकारों ने घर के बाहर मंडप निर्माण की बात कही है, लेकिन आजकल मंडप घर में बनाया जाता है। मंडप में हल, पटेला, हरा बांस, फूल तथा मूछ का उपयोग करता है। नंबर पाँच, नांदी श्राद्ध और पुण्याहवाचन, इस कार्य का अब लोप हो गया है। नंबर छह, वधु गृह गमन, वर कन्या के घर जाता है, उसके साथ बंधु बांधन तथा स्वजन आज सभी आते हैं। आजकल इस बारात में काफी खर्च किया जाता है। नंबर सात, मधुपर्क, विशेष सम्मानित व्यक्ति का मधुपर्क किया जाता है कन्या के घर। सर्वाधिक सम्मान प्राप्त व्यक्ति मधुपर्क विधि से वर का सम्मान किया जाता है। आठ, स्नान पान परिधापन और समनहन, विवाह के समय कन्या को स्नान कराना, नया वस्त्र पहनाना, दर्भ की मेखला पहनाना काठक और पराशकर ने आवश्यक बताया है। नंबर नौ, समंजन, वर वधु को मंत्र उच्चारण के साथ आमने सामने बैठाकर उनके दृश्यों के समंजन की कामना की जाती है। नंबर दस, प्रतिसरबंध, रोली रंजित सूत्र कन्या की कलाई में बांधी जाती है, साथ में आर्य मंजित अक्षत की छोटी पोटली बांधी जाती है, कहीं कहीं लोहे का छल्ला भी बांधा जाता है। नंबर ग्यारह, वर वधु निष्क्रमण, घर के एकांत स्थान से वर वधु का निष्क्रमण मंडप में कराया जाता है, पराशकर गृहस्थ में इसका उल्लेख किया गया है। नंबर बारह, परस्पर समीक्षण, वेद मंत्रों के साथ वर वधु के बीच एक पर्दा लटका देते हैं, दोनों एक दूसरे का अवलोकन करते हैं। नंबर तेरह, कन्यादान, गृहसूत्रों में इसका वर्णन किया गया है, कन्या का पिता इस अवसर पर वर से कहता है कि यह अपनी विवाहिता के प्रति धर्म काम में मिथ्या व्यवहार ना करे। वह उत्तर देता है, मैं ऐसा ना करूँगा, नातिचारामि। नंबर चौदह, अग्नि स्थापन और होम, गृह सूत्रों में इसका उल्लेख है। नंबर पंद्रह, पाणी ग्रहण, इस अवसर पर कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। संस्कार की दृष्टि में यह क्रिया विशेष महत्व की नहीं है, क्योंकि इसके साथ किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है, पर घर में वर के हाथ में कन्या का हाथ देना प्रतीकार्थी है, इसलिए विवाह का अन्य नाम पाणी ग्रहण भी है। सोलह, लाजा होम, वधु भूने हुए अन्न की तीन आहुतियाँ देती है, वर मंत्रोच्चारण करता है, चतुर्थ आहुति मौन रूप में दी जाती है। नंबर सत्रह, अग्नि परिणयन, वर वधु अग्नि और कलश के साथ परिक्रमा करता है। नंबर अठारह, अश्वारोहण, वधु को पत्थर की शिला पर चलाया जाता है, छोटी सिल मिलने के कारण अब वह सिल पर पैर रख देती है, पत्थर दृढ़ता तथा स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वर कहता है, इस पत्थर पर आरूढ़ हो, तू पत्थर समान स्थिर हो, तू शत्रुवत व्यवहार करने वाले के पैरों को रौद डाले तथा शत्रुओं को मुंह की दे। नंबर उन्नीस, सप्तपदी, अग्नि जो वेदी पर स्थापित की गई है उसकी उत्तर दिशा में चावल को सात राशियों पर वर और वधु इस तरह चलते हैं कि वधु का दाहिना पैर हर बार एक राशि पर पड़े। सप्तपदी में आजकल कुछ जगहों पर अग्नि परिणयन के कृत्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। वर तथा वधु दोनों अग्नि घट तथा स्तंभ के साथ फेरे करते हैं, इसे भावरे कहा जाता है। नंबर बीस, मूर्धा विशेष, वर वधु केवल वधु के सिर पर जल छिड़कते हैं। ग्यारह, सूर्यो दीक्षण, वधु सूर्य की ओर देखती है। तेईस, हृदय स्पर्श, मंत्रों के साथ वर वधु के हृदय को स्पर्श करता है। नंबर तेईस, प्रेक्षकानुमंत्रण, मंत्रण, उपस्थित जन को विवाह का साक्षी बनाया जाता है। चौदह, दक्षिणादान, ब्राह्मण को दक्षिणादान देने का कार्य किया जाता है। पच्चीस, गृह प्रवेश, दक्षिणा के बाद घर वर के घर में वधु का प्रवेश होता है। छब्बीस, गृह प्रवेक्षणीय होम, वधु जब वर के गृह में प्रवेश करती है तो सर्वत्र होम होने का विधान किया गया है। सत्ताईस, ध्रुवारुंधति दर्शन, विवाह के दिन वधु ध्रुव तारा और अरुंधति नक्षत्र को देखती है। अश्वलायन सप्तरसी मंडप देखने की बात करते हैं, ध्रुव अचल है। 28 अग्नेय स्थाली पाक, अग्नि को नैवेद्य समर्पित करने की प्रथा है। नंबर 29 त्रिरात्र व्रत, गृह सूत्रों का कहना है कि 1 वर्ष 12 दिन 6 रात अथवा कम से कम 3 दिन नव दंपति को लवण क्षार युक्त भोजन न करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और सहवास से दूर रहना चाहिए। इसका लक्ष्य वर वधु को संघर्ष का पाठ पढ़ाना है। 30 आयु, वधु की आयु वर की आयु से कम होनी चाहिए। नंबर 31 गौरी हर पूजा, महादेव और पार्वती की पूजा। इस प्रकार 32 हरिद्रारोपण, 33 अद्राक्षरोपण, 34 मंगला सूत्र बंधन, 35 उत्तरी प्रांत बंधन, 36 अरड़ी दान और 37 देवकोत्थापन और 38 मंडपोद्वासन आदि कार्य किए जाते हैं। हिंदू समाज में विवाह, हिंदू विवाह अनेक आदेशों एवं अनुदेशों से संबंध है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक युग में विवाह से संबंधित ये मान्यताएं अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी अथवा उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण अधिक उदार था, परंतु कालांतर में विवाह से संबंधित ये नियम जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं। हिंदू विवाह की मान्यताओं को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 अंतर विवाह, नंबर 2 बहिर्विवाह, नंबर 3 अनुलोम, नंबर 4 प्रतिलोम विवाह। अंतर विवाह, अंतर विवाह का अर्थ है धर्मानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही वर्ण में विवाह करना चाहिए, परंतु आधुनिक युग में संपूर्ण वर्ण व्यवस्था हजारों जातियों या उपजातियों में विभाजित है और फलस्वरूप सभी व्यक्तियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने ही जाति या उपजाति के अंदर विवाह संबंध स्थापित करें। इससे भी स्पष्ट है कि अंतर विवाह वह वैवाहिक नियम है जो प्रत्येक स्त्री या पुरुष को अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करने की अनुमति प्रदान करती है। होलसम के अनुसार अंतर विवाह वह नियम है जिनके अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए। सेनार्ड का भी यही विचार है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में अंतर विवाह का क्षेत्र काफी विस्तृत था, क्योंकि उस समय तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को स्वर्ण माना जाता था, केवल शूद्रों को अलग समूह में रखा गया था। अतएव सवर्ण लोगों से अपना जीवन साथी चुन सकते थे। कालांतर में सभी लोग एक दूसरे से अलग होने लगे और विवाह का अर्थ अपने ही वर्ण के स्त्री पुरुष से विवाह करना हो गया। स्मृति काल के धार्मिक समाज में रक्त की विशुद्धता और धार्मिक क्रियाओं की पवित्रता के फलस्वरूप जातियों या उपजातियों का विभाजन प्रारंभ हो गया और इस तरह अंतर विवाह का अर्थ केवल अपने ही उपजाति में विवाह करने में ही सीमित रह गया। धर्म शास्त्रों के युग तक अंतर विवाह का अर्थ केवल अपनी उपजाति के अंतर्गत विवाह करना ही नहीं, बल्कि एक विशेष भाषी क्षेत्र के अंदर अपनी उपजाति के सदस्यों से विवाह करना समझा जाने लगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक युग में अंतर विवाह वह नियम है जिनके अनुसार एक व्यक्ति को अपने ही जाति या उपजाति क्षेत्र और सामाजिक वर्ग के सदस्यों के साथ विवाह करने की अनुमति दी जाती है। अंतर विवाह के प्रकार, अंतर विवाह को निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 जनजातीय अंतर विवाह, जनजातियां प्राय अपनी ही जनजाति के अंदर विवाह करती हैं। जनजाति अंतर विवाह का कारण प्राय सांस्कृतिक है। प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती हैं, उनमें से बाहर समन्वय करना उनके लिए प्राय कठिन होता है। नंबर 2 प्रजाति अंतर विवाह, अपनी ही प्रजाति के अंदर विवाह करने को प्रजाति अंतर विवाह करते हैं। दक्षिण अमेरिका में श्वेत निग्रो से विवाह नहीं कर सकता। नंबर 3 जाति अंतर विवाह, अपनी ही जाति में विवाह करने को इस श्रेणी में रख सकते हैं। नंबर 4 उपजाति अंतर विवाह, इस प्रकार के विवाह में वर वधु का चुनाव अपनी उपजाति तक सीमित होता है। नंबर 5 वर्ग अंतर विवाह, इस प्रकार के विवाह पश्चिमी देशों में अधिक प्रचलित हैं। बहुधा व्यक्ति अपने ही वर्ग में अपने ही हैसियत के व्यक्ति से विवाह करना पसंद करते हैं। अंतर विवाह के कारण, अंतर विवाह के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1 संगठन को स्थिर रखने के लिए, अंतर विवाह आपसी संगठन को बनाए रखने में सहायक होता है। नंबर दो पृथकता की नीति बहुधा एक दूसरे बहुधा एक समूह दूसरे समूह से अलग रहना पसंद करता है इसलिए बहिर्विवाह को प्रोत्साहित नहीं करता है। नंबर तीन समूह की शक्ति और रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अंतर विवाह समूह की एकता बनाए रखने तथा रक्त की शुद्धता को कायम रखने में सहायक हो सकता है। नंबर चार समूह में संपत्ति बनाए रखने के लिए अंतर विवाह से एक समूह की संपत्ति दूसरे समूह में नहीं जा सकती। नंबर पाँच धर्म की समानता के कारण अंतर विवाह धर्म की एकता के कारण भी होते हैं। नंबर छह सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण एक धर्म का होने पर भी यदि उनमें सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है तो विवाह नहीं हो पाता। नंबर सात प्राजातिक समानता के कारण इससे भी अंतर विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर आठ भौगोलिक पृथकता के कारण दूर दूर बसे हुए लोग आपस में विवाह करना पसंद नहीं करते हैं। नंबर नौ ऊंच नीच की भावना इसके कारण भी लोग अंतर विवाह पर जोर देते हैं। नंबर दस व्यवसाय की समानता इसके कारण भी अंतर विवाह उचित माना जाता है। अंतर विवाह से लाभ अंतर विवाह से निम्न लाभ होते हैं। नंबर एक रक्त की शुद्धता बनी रहती है। नंबर दो संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता। नंबर तीन समूह की एकता बनी रहती है। नंबर चार समूह के व्यवसाय का रहस्य बना रहता है। अंतर विवाह से हानियां अंतर विवाह से निम्नलिखित हानियां हैं इससे राष्ट्रीयता और एक की भावना को ठेस पहुंचती है। नंबर दो जीवन साथी चुनने का क्षेत्र संकुचित होता है जिससे दहेज कन्या शुल्क बहुर्विवाह आदि कुरीतियां उत्पन्न होती हैं। इससे वर्ग इच्छा उत्पन्न होती है जिसका नग्न उदाहरण जातिवाद है। जैविकी दृष्टिकोण से अंतर विवाह उचित नहीं है इससे संतान हुष्ट पुष्ट नहीं रहता। बहिर्विवाह हिंदू समाज में जहां एक ओर अंतर विवाह के आदेश दिए गए हैं वहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र परवर और पिंड के सदस्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहिर्विवाह वह नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति पर एक विशेष समूह तथा क्षेत्र में विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस प्रकार बहिर्विवाह वह विवाह है जो किसी बाहर के व्यक्ति से संबंध किया जाता है। मुख्य रूप से बहिर्विवाह चार माने जाते हैं। नंबर एक सगोत्र विवाह, नंबर दो सहप्रवर बहिर्विवाह, नंबर तीन टोटम बहिर्विवाह, नंबर चार सपिंड बहिर्विवाह। नंबर एक सगोत्र बहिर्विवाह। गोत्र के संबंध में विभिन्न विचार मिलते हैं। सत्यपाठ हिरण्यकेशी श्रोत सूत्र के अनुसार विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाज गौतम अन्य वशिष्ठ कश्यप और अगस्त्य नामक आठ ऋषियों की संतान गोत्र कहलाती है। वैदिक साहित्य में गोत्र शब्द का प्रयोग गौओं की रक्षा के लिए बनाए गए बाड़े के रूप में किया गया है। मैक्स मूलर भी इस धारणा के अनुसार मानते हैं कि जिन लोगों के गाय एक स्थान पर बंधती थी वे उस स्थान पर रहने वाले एक पूर्वज ऋषि की संतान समझे जाते थे और बाद में यह लोग एक ही गोत्र के सदस्य समझे जाने लगे। पाणिनि ने अपने एक सूत्र में पोते तक की संतान को गोत्र कहा है। पतंजलि के महाभाष्य से स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले 30,000 ऋषि हुए किंतु उनमें से केवल 6 ऋषियों की संतान का प्रसार हो पाया। अतएव इन्हीं 8 ऋषियों की संतान ही गोत्र कहलाती है। मेधातिथि जो मनुस्मृति के सबसे बड़े टीकाकार थे ने लिखा है कि गोत्र का अर्थ यह नहीं कि वे किसी विशेष समय में उत्पन्न हुए ऋषि की संतान है, परंतु जैसे परंपरा के अनुसार कुछ को ब्राह्मण माना जाता है वैसे ही गोत्र भी परंपरागत वंश का नाम है। विज्ञानेश्वर के अनुसार वंश परंपरा में जो नाम प्रसिद्ध होता है वह वंश का गोत्र कहलाती है। वंश परंपरा प्रसिद्धम गोत्रम। बौधायन ने गोत्र की संख्या करोड़ों में बताई है। मिताक्षरा न्याय के अनुसार गोत्र का अर्थ है रक्त की निकटता है। उपरोक्त विचारों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोत्र शब्द का प्रयोग एक घेरे में रहने वाले तथा एक समूह विशेष के व्यक्तियों के लिए किया गया है। इसी धारणा के अनुसार आपसी विवाह सगोत्र विवाह को वर्जित कर दिया गया है जो बाद में चलकर बहिर्विवाह की प्रथा का कारण बन गया। इसलिए हिंदुओं में सगोत्र कन्या से विवाह का निषेध है। गोत्र के बाहर विवाह करने का प्रावधान मुख्य रूप से उच्च जातियों में है। गोत्र में विवाह करने वाले को प्रायश्चित करके स्त्री को माता या बहन के समान रखना पड़ता है। उससे संतान उत्पन्न होने पर चंडाल मानी जाती है। मनु ने सगोत्र विवाह को वर्जित कहते हुए कहा है, आसपिंडा चाया मातुर रस गोत्रा चाया पितु साप्रस अस्तवा द्विजाति नामदार कर्मणि मैथुने। नंबर 2, सापरवर बहिर्विवाह। परवर शब्द बिच्छ वर्णों अथवा बी धातु से बना है। वर का अर्थ है चुन लेना, प्र का अर्थ है विशेष रूप से, अर्थात जिसे विशेष रूप से यज्ञ के लिए चुन लिया जाए उसे परवर कहते हैं। श्री पांडुरंग वामन काले का कथन है कि यज्ञ करते समय पुरोहित कुछ प्रसिद्ध यशस्वी ऋषियों को चुनकर उनके नाम से यज्ञ में आहुति देता था और प्रार्थना करता था कि मैं अग्नि में वैसे ही आहुति देता हूँ जैसे भृगु ने दी थी, जैसे अंगिरा ने दी थी, अन्नी ने दी थी। इस प्रकार चुने गए ऋषि जो प्राचीन ऋषियों में से चुने गए थे परवर कहलाने लगे। बाद में परवर ऋषियों की संख्या निश्चित कर दी गई और वह संख्या 49 है। वैदिक इंडेक्स के अनुसार परवर का अर्थ आह्वान करना होता है। डॉक्टर प्रभु के अनुसार इंडो आर्यन लोगों में अग्नि पूजा और हवन करने का प्रचलन था। हवन करते समय पुरोहित अपने प्रमुख और श्रेष्ठ ऋषि पूर्वज का नाम लेते थे। इस प्रकार प्रवर के अंतर्गत एक व्यक्ति के उन पूर्वजों का समावेश है ये अग्नि आहार करते हैं। धीरे धीरे इसके साथ साथ सामाजिक धारणा भी जुड़ गई और इन ऋषि पूर्वज का महत्व अनेक घरेलू और सामाजिक संस्कारों में भी हो गया जिसमें विवाह संस्कार प्रमुख है। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि वह सभी व्यक्ति एक सामान्य ऋषि पूर्वज की संतान मानने के कारण आपस में विवाह नहीं करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि परिवार का कोई भी संबंध रक्त संबंध से नहीं है बल्कि यह एक धार्मिक या आध्यात्मिक या संस्कार संबंधित समूह है। वास्तव में परवर भी प्राचीन ऋषियों का नाम है। विज्ञानेश्वर के अनुसार केवल ब्राह्मणों के ही वास्तविक गोत्र प्रवर होते हैं। क्षत्रिय और वैश्यों के गोत्र और प्रवर उनके पुरोहितों पर आश्रित होते हैं। शूद्रों के कोई गोत्र और प्रवर नहीं होते हैं। पांडुरंग वामन काले ने गोत्र और प्रवर का अंतर बतलाते हुए कहा है कि गोत्र उन अति प्राचीन ऋषियों के नाम हैं जो परंपरा द्वारा अनेक पीढ़ियों से किसी वंश या व्यक्ति के पूर्वज माने जाते हैं, किंतु परवर से अत्यंत प्राचीन ऋषि हैं जो बड़े बड़े यशस्वी और गोत्र चलाने वाले ऋषियों के पूर्वज थे। उच्च जातियों में सापर्वत विवाह को भी वर्जित माना गया है। वे सभी सापर्वत होते हैं जो यज्ञ में एक ही ऋषि का नाम उच्चारण करते हैं। इस प्रकार प्रवर एक प्रकार का धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध है। सापर्वत विवाह प्राचीन काल में वर्जित नहीं थे जैसा कि अल्तेकर और डांगे ने कहा है। इस प्रथा का प्रादुर्भाव शायद गीहा और धर्म सूत्रों के समय से हुआ है। नंबर 3, टोटम बहिर्विवाह। भारतीय जनजातियों में टोटम के आधार पर भी विवाह होता है। एक टोटम के ही मानने वाले अपने समूह में विवाह नहीं कर सकते, वे दूसरे टोटम मानने वाले के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। टोटम किसी वनस्पति या जानवर को कहते हैं जिससे कोई जनजाति अथवा विशेष संबंध मानती है। गोंडा में बहिर्विवाही वर्ग वंश कहलाते हैं। इन वंशों का वर्गीकरण पूजे जाने वाले देवताओं की संख्या पर निर्भर है। 7 देवता पूजने वाले वर्ग के व्यक्ति अपने वर्ग से बाहर 5, 4, 3 देवता पूजने वाले वर्गों में ही विवाह कर सकते हैं। ये वर्ग टोटम वाले अन्य बहिर्विवाही उपवर्गों में बटे होते हैं। इनमें दूध भाई या मामा भाई का संबंध माना जाता है और अंतर विवाह वर्जित होता है। नंबर 4, सपिंड बहिर्विवाह। हिंदू समाज में सपिंड विवाह भी वर्जित है। सपिंड की परिभाषा भी भिन्न है। मिताक्षर संप्रदाय के अनुसार सपिंड उन लोगों को कहते हैं जिनके शरीर में एक ही पिंड या शरीर अंश हो। इस प्रकार सपिंड में वे सभी आते हैं जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी एक ही होते हैं। बृहस्पति के अनुसार माँ की 5 और पिता की 7 पीढ़ियाँ सपिंड के अंतर्गत आती हैं। बोधायन के अनुसार मामा और बुआ की संतानों में भी विवाह होना अनुचित माना गया है। परंतु भारत में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सब स्थानों पर सपिंड का विचार एक सा नहीं है। दक्षिण में नंबूदरी ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य ब्राह्मणों में मामा की संतान से संबंध स्थापित करना अच्छा माना जाता है। मद्रास की वेलम जाति में भांजी तथा ब्राह्मणों से मैसाली की लड़की से विवाह करना अच्छा माना जाता है। भारत में गांव के बाहर विवाह करना उत्तम माना जाता है। साधारणतः एक गांव का व्यक्ति अपने गांव में विवाह नहीं करता। छोटा नागपुर की मुंडा और अन्य जनजातियों में भी एक प्रथा प्रचलित है। आसाम में नागा जनजातियां खेल में बटी होती हैं। खेल एक विशेष स्थान पर रहने वाले नागाओं को कहा जाता है। एक खेल का व्यक्ति अपने खेल में विवाह नहीं कर सकता। गारो जनजाति मूरक और संगम नामक दो जातियों में बटी होती है जिनमें अंतर विवाह वर्जित है। इसी प्रकार बहुत सी अन्य जनजातियों में अंतर विवाह वर्जित है। बहिर्विवाह से लाभ। बहिर्विवाह के दृष्टिकोण ने समाज को एक प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान किया है, साथ ही उसने सांस्कृतिक एकता में वृद्धि की है। यहाँ बहिर्विवाह के लाभों की चर्चा संक्षेप में की जा रही है। नंबर एक, जैविकी दृष्टिकोण से बहिर्विवाह एक उत्तम व्यवस्था है। इस विवाह से यह अवश्य कहा जाता है कि जो संतान होगी वह उत्तम होगी। अनेक जीव शास्त्री भी यही मानते हैं कि रक्त संबंधियों के मध्य विवाह होने से बच्चों में शारीरिक दोष हो जाने की संभावना रहती है। दूसरी ओर बहिर्विवाह के फलस्वरूप बुद्धिमान स्वस्थ और सुंदर संतानों का जन्म होता है। नंबर दो, बहिर्विवाह के फलस्वरूप विभिन्न समूहों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इससे समाज में संघर्ष कम होता है। नंबर तीन, बहिर्विवाह की व्यवस्था समूह में नैतिकता बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध हुई है। यदि रक्त संबंधियों में विवाह की छूट दे दी जाती है तो परिवार में ही अनैतिकता और अनाचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर चार, प्रोफेसर काले के अनुसार बहिर्विवाह के माध्यम से एक पीढ़ी को अपने दोस्त दूर करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि इसके द्वारा रक्त का सही सदैव नवीन रूप ग्रहण करते रहते हैं। उपयुक्त लाभों की इसी दृष्टि से ही समन्वर ने लिखा है कि अंतर विवाह रूढ़िवादी और बहिर्विवाह प्रगतिवादी। बहिर्विवाह समाज के लिए वास्तव में अत्यंत उपयोगी है। बहिर्विवाह से हानियां। बहिर्विवाह की प्रथा से हिंदू समाज में अनेक बुराइयां भी उत्पन्न हो गई है। करंदी करने लिखा है कि बहिर्विवाह की प्रथा में वर वधु के चुनाव का क्षेत्र बड़ा संकुचित हो जाता है, जिससे दहेज की कुप्रथा बढ़ती है। कर्ज लेकर देने पर भी कन्या सुखी नहीं रह पाती है, क्योंकि वर का मूल्य अधिक हो जाता है और कन्या को ससुराल में अनेक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि उसे कभी कभी आत्महत्या भी करनी पड़ती है। गरीबी के कारण माता पिता कन्या को बेमेल वर से विवाह देते हैं और विधवा समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। हिंदू विवाह की मान्यताओं में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का विशेष स्थान है। प्राचीन भारतीय समाज में स्वर्ण विवाह को सबसे उत्तम माना गया है, परंतु इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर अनुलोम और प्रतिलोम का भी उल्लेख हुआ है। यहाँ उनका उल्लेख हम संक्षेप में कर रहे हैं। नंबर एक, अनुलोम विवाह। मनु ने स्वर्ण विवाह को सबसे उत्तम माना है, परंतु अनुलोम विवाह को भी मान्यता प्रदान की है। मनुस्मृति में लिखा है, स्वर्णाग्रे द्विजाति नाम प्रशस्ता दार कर्मणि कामतस्तु प्रवित्ता नामी मस्याहु कर्मसो वरा। अनुलोम विवाह के अंतर्गत उच्च जाति का पुरुष नीची जाति की स्त्री से विवाह करता है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। राजा दशरथ की तीसरी स्त्री सुमित्रा शूद्र कन्या थी। ब्राह्मण राजा अग्निमित्र ने एक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया था। ब्राह्मण रुद्रसेन द्वितीय ने वैश्य जाति गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय की कन्या प्रभावती गुप्त से विवाह किया। हिंदू समाज में पुरुष की अत्यधिक प्रधानता है। विवाह के पूर्व पुत्री की जाति पिता की होती है और विवाह के बाद पति की हो जाती है। इस प्रकार हिंदू समाज में पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है और पुरुष के अधिकारों में ब्राह्मण पुरुष को अन्य जातियों के पुरुषों से अपेक्षा अधिक अधिकार है। इसलिए ब्राह्मण पुरुष को अन्य तीन जातियों की कन्याओं से विवाह की छूट थी। इसके बाद क्षत्रिय पुरुष शक्तिशाली माना जाता था और उसे ब्राह्मण कन्या के अतिरिक्त अन्य जाति की कन्याओं से विवाह की छूट थी। इसी प्रकार वैश्य पुरुष ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्या के अतिरिक्त अन्य निम्न जाति की कन्या से विवाह कर सकता था। अनुलोम विवाह के नियम आरंभ में काफी उदार थे, परंतु जैन और बौद्ध धर्मों के हास के बाद चारों वर्ण क्रमशः हजारों जातियों एवं उपजातियों में बट गए। रक्त की शुद्धता और धार्मिक पवित्रता के आधार पर इन सभी जातियों एवं उपजातियों को भी एक दूसरे से तुलना में ऊंचा और नीचा समझा जाने लगा। यहीं से अनुलोम विवाह के नियम कुलीन विवाह की मान्यता में बदल गए। अनुलोम विवाह से हानियां। विवाह के क्षेत्र में अनुलोम विवाह के नियमों ने अनेक गंभीर सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, जिनका उल्लेख यहाँ संक्षेप में किया जा रहा है। नंबर एक, अनुलोम विवाह के फलस्वरूप उच्च जातियों में लड़कों की मांग अधिक हो जाने के कारण दहेज प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसने बाद में एक संक्रामक रोग का रूप धारण कर लिया। नंबर दो, निम्न जातियों में लड़कियों की मांग बढ़ने के कारण कन्या मूल की प्रथा भी प्रचलित हुई, जो आज भी किसी न किसी रूप में चली आ रही है। नंबर तीन, इस विवाह के फलस्वरूप उच्च जातियों में बहुपत्नी प्रथा का जन्म हुआ और संभ्रांत लोग अनेक पत्नियां रखने लगे। नंबर चार, कालांतर में अनुलोम विवाह इतना रूढ़िवादी हो गया कि लड़की के लिए उच्च जाति का वर न मिलने पर उच्च जाति के किसी वृद्ध से विवाह कर दिया जाने लगा। इससे बेमेल विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई। बेमेल विवाहों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप बाल विधवाओं की समस्या ने एक गंभीर रूप धारण कर लिया। पांच, अनुलोम विवाह के अंतर्गत कुलीनता की भावना के फलस्वरूप माता पिता शीघ्र ही अपने बच्चों का विवाह करने अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने का प्रयास करने लगे, जिससे विधवा विवाह की संपन्न समस्या उत्पन्न हुई। नंबर दो, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में अनुलोम विवाह के प्रतिकूल धारा बहती है। निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है। मनु ने प्रतिलोम विवाह की अति निंदा की है, परंतु बाद के शास्त्रकारों ने उसे स्वीकार किया है। याज्ञवल्क ने ब्राह्मण या क्षत्रिय को क्षत्रिय या वैश्य की लड़की से विवाह करने की अनुमति दी है, परंतु शूद्र कन्या लेने से मना किया है। मनु और याज्ञवल्क दोनों ही ब्राह्मण के शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र के अधिकारों का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिलोम विवाहों की मान्यता थी। कुमार ने लिखा है कि चंद्रसेन और मातिसेन नामक उसके दो पराशर भाई थे, जो उसके पिता की शूद्र स्त्री की संतान थे। कदम्ब वंश के काकुत अस्त वर्मा नामक ब्राह्मण राजा ने अपनी कन्याएं गुप्त राजाओं को दी थी। दुष्यंत ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण पुत्री शकुंतला से विवाह किया था। प्रतिलोम विवाह की मान्यता मिलने पर और उसके कुछ उदाहरण मिलने पर यह अवश्य स्वीकार किया जाएगा कि समाज में व्यापक रूप से कभी यह प्रचलित नहीं रहा। प्रतिलोम विवाह को हिंदुओं ने कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा और इसके उदाहरण अपवाद रूप में ही मिलते हैं। धर्म शास्त्रों में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतानों को कोई भी जाति प्राप्त नहीं है, बल्कि वे चंडाल या निषाद हो जाते हैं।